नमाज़ नबी किताब में से तीसरे चैप्टर गुसल, वुज़ू और तयम्मुम। इसमें से अपने अमल की बातों को नोट करेंगे। इसमें से जो हमने सीखी वो है गुसले जुनाबत का तरीका, और जुनाबत का गुसल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है हैज़ के गुसल से। और जुनाबत पे बात पीछे हो चुकी, तरीका इसका क्या है अगर इसको हम सारी रिवायतों को जमा करते हुए अपने पास रखें। तो पहली बात, दोनों हाथ धोए जाएंगे, फिर शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट को धोया जाएगा बाएं हाथ से, फिर वो हाथ जिससे जिस्म को छुआ उसको साबुन से धोया जाएगा, फिर कुल्ली की जाएगी, 3 दफ़ा कर ली जाए तो बेहतर है, फिर नाक में पानी डाला जाएगा 3 बार, फिर चेहरा धोया जाएगा, फिर कोहनियों तक हाथ धोए जाएंगे, और उसके बाद सर पर पानी डालकर बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाएगा। और उसका तरीका चुल्लू भरने का होगा, जैसे लप भरी जाती है, लप भर के और पानी सर में डाल के, फिर जैसे सर में तेल लगाया जाता है उस तरह उस पानी को कोशिश की जा सकती है कि बालों के अंदर तक चली जाए, और उसके बाद फिर पूरे बदन पर पानी डाला जाएगा। और जहाँ गुसल किए वहाँ से थोड़ा हट के फिर वहाँ पे पांव धोए जाएंगे। अब ये है वो एक आम तरीका जो गुसले जनाबत का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। पहले जिस्म को साफ़ किया जाएगा, फिर वज़ू किया जाएगा, और वज़ू में बास कहते हैं कि पूरा वज़ू किया जाएगा, और जो ज़्यादा ऑथेंटिक बात है कि सिर्फ हाथों का धोना, कुली करना, नाक में पानी डाल के मुंह धोना, और सर का मसा भी नीवन किया जाएगा, क्योंकि रिवायत इससे हमें पता चली कि जब सर पूरा ही धुलेगा तो मसा की ज़रूरत नहीं रहती, इस तरह पाँव भी नहीं धोए जाएंगे। तो ये तरीका हमने इससे देखा। फिर इसके बाद अगली चीज़ कि शौहर और बीवी एक ही बर्तन से पानी लेकर गुसल कर सकते हैं। इस हालत में भी कि दोनों के हाथ अंदर एक दूसरे से टच भी करेंगे, मतलब उनके हाथों की गंदगी कोई ऐसी नहीं है कि उनको उसके अंदर रुकावट हो। उस दौर में पानी इस तरह नहीं था जो आज हमारे पास है टैब्स के अंदर और शावर्स के अंदर। तो अगर आज भी कभी ऐसा मसला हो कि पानी नहीं मौजूद और किसी जगह टब में या बाल्टी में भर के रखा हुआ है, और वो एक ही बाल्टी है, तो अगर किसी के पास मग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे पानी निकाला जाए, तो बराह रास्त हाथ अंदर डाल के उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। मुराद यह है कि इसमें कोई हरज नहीं है कि इंसान ये सोचे कि अभी तो मेरी गंदगी की हालत है, अब मैंने अगर अंदर पानी में हाथ डाल दिया तो पानी तो गंदा हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। फिर अगली बात हमने इससे सीखी कि गुसल पर्दे में करना चाहिए, यानी खुलेआम इंसान अपने आप को जाहिर ना करे। फिर अगली बात कि जुमे के दिन गुसल करना मसनून है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन गुसल करना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, औरत भी करेगी और मर्द भी करेगा। चाहे औरतें मस्जिद में जमात के लिए नहीं भी जाती, लेकिन जुमे के दिन गुसल करना इंसान को वैसे भी जुमे के दिन की एक खूबी और खुशी और उसका ईद का दिन होना इस तरह का एहसास भी दिलाता है। फिर अगली बात कि जो शख्स मुर्दा को गुसल दे, मैयत को गुसल देगा, वो वज़ू कर ले बाद में तो भी ठीक है, और गुसल कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। कोई ना करे तो हर्ज नहीं, लेकिन गुसल करने से आप देखिए कि किसी को मुर्दा हालत में देखना एक स्ट्रेसफुल काम है। इंसान अपने ही जैसे एक इंसान को बेबसी के साथ अपने सामने लेटा हुआ देखता है, जिस पे बोझ आता है, और बाज़ दफ़ा ये थकन वाला काम भी होता है, डेड बॉडी को मूव करना, इधर उधर हिलाना जुलाना, तो वो चीज़ तकलीफ़ की सबब है। तो उस सूरत में फिर बाद में गुसल करना चाहिए। अगली चीज़ हमने सीखी कि इस्लाम कबूल करने वाला यानी न्यू मुस्लिम जो है उसको गुसल करना चाहिए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस्लाम कबूल करने से पहले हो सकता है कई बार उसके ऊपर जुनाबत की हालत आई होगी और उसने गुसल नहीं किया और पाक नहीं था, अब चूंकि उसने नमाज पढ़नी है फौरन, तो उसको पहले गुसल करवाया जाएगा। अगली चीज़ हमने इसे सीखी कि ईद के दिन भी गुसल करना चाहिए या उसका अहतमाम करना चाहिए, दोनों ईदों में। अगली चीज़ हमने देखी कि एहराम बांधने से पहले गुसल करना भी मसनून है, यानी ये सारे मवाक़े अगर हम सारे जमा कर रहे हैं ना कि किस किस मौके पे गुसल किया जा सकता है। फिर अगली चीज़ कि कि मक्का में दाखिल होते वक्त भी गुसल किया जा सकता है। आप सोचिए कि पहले दौर में लोग पैदल और काफलों में और मट्टी में आते थे, मिट्टी और पसीने होते थे। अब अगर एकदम सीधा उम्रे के लिए चले जाएं और वहाँ इतना लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, तो जिस्म से बू और पसीने की वजह से दूसरों का कितना बुरा हाल हो। तो इससे एक बहुत ही अच्छा अदब मिला, हमें भी मिला अपने लिए, कि जब हम दूर से जाएं तो मक्का में दाखिल होने से पहले, अगर आप मक्का में गए अपने होटल में जाएं, वहां अगर गुसल करके साफ सुथरा अहराम बांध के दोबारा निकलें तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई पहले ही, जैसे मीकात पे आज के दौर में रोकी जाती है बसें या जहाज़ों में भी बता देते हैं, तो अगर उस वक़्त उसने अपने आप को साफ सुथरा करके पहने तो फिर ज़रूरत नहीं है इसकी। अगली चीज़ मिसवाक के बारे में, मिसवाक के साथ जो नमाज़ पढ़ी जाएगी वो नमाज आम नमाज़ों से 70 गुना बेहतर होगी। यानी एक नमाज जो मिसवाक के बग़ैर पढ़ी जाती है और एक वो नमाज जो मिसवाक के साथ पढ़ी जाती है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो लिहाजा इंसान को एहतमाम करना चाहिए। अगली चीज़ हमने इससे सीखी कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम मिसवाक करना होता, क्योंकि रात को सोने की वजह से इंसान के मुंह में बास हो सकती है, बैड स्मेल हो सकती है, तो मिसवाक करने की आदत होनी चाहिए। और मिसवाक करने का एक ख़ास तरीका भी है। बस लोगों को चूंकि वो तरीका नहीं आता तो वो मिसवाक करते नहीं। और आप देखिए कि कौन है जिसको कोई कहे कि बाय वन गेट 69 फ्री, कोई एक स्टोर आपको ये डील दे दे तो कितने लोग हैं जो उसको छोड़ देंगे। और नेकियों के मामले में हम इतने अमीर होते हैं, हम कहते हैं छोड़ो, हु केयर्स। जमात की नमाज़ पढ़ते हैं तो 27 नमाजें, और मिसवाक के साथ पढ़ते हैं तो 70 नमाजें, सुबहान अल्लाह। और इसके बहुत से फ़वाद हैं। आप देखिए कि इंसान के मुंह से गंदी रतूबतें निकल जाती हैं, फिर आप देखिए कि इसकी वजह से कहते हैं कि बाल सफ़ेद नहीं होते। यानी मेडिकली भी इस वक्त बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रूव हो गई हैं। ब्रश भी कर सकते हैं, जहन में हो सकता है किसी के सवाल हो कि क्या ब्रश ना करें, ब्रश भी कर लें और मिसवाक भी कर लें। सुबह के वक्त जो मिसवाक करें उसी के सिरे पे थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लें, फ्रेश भी हो जाएगा मुंह। और आप देखिए कि मिसवाक नरम होती है, आपके दांत और मसूड़े ख़राब नहीं होते। इसके बरक्स जब आप ब्रश करते हैं और ज़रा सा आप ज़्यादा कर लें या सख्त हाथ से कर लें तो मुंह जो है वो छिलने लगता है। फिर इसके बाद अगली चीज़ हमने इस हिस्से से जो सीखी कि सुबह उठकर सबसे पहले हाथ धोने चाहिए, फिर पानी के बर्तन में हाथ डाले जाए, क्योंकि सोते में नहीं पता होता कि हाथ कहाँ कहाँ लगे हैं। फिर हमने इस हिस्से से वुज़ू का तरीका भी सीखा, बल्कि वुज़ू से पहले एक और सुन्नत सीखी। और ये सुन्नतें अगर आप अलग से नोट करते जाएं तो आपकी पूरे दिन की सुन्नतें जमा हो सकती हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लम सुबह उठते थे तो अपनी जगह पे बैठकर नाक को झाड़ते थे, यानी जैसे इसी तरह अगर आप बैठ के इस तरह थोड़ा सा, मतलब एक आवाज़ के साथ नाक को झाड़ें, तो आपने क्या फरमाया कि शैतान रात इंसान के नाक के ये जो भानसे होते हैं ना, इसमें गुजारता है। अब शैतान सारा दिन तो काम करता है, रात उसको भी तो कहीं रहना ही है ना, तो वो हमारे नाक की इस कोठरी में रहता है। और आप 3 दफ़ा झाड़ेंगे ना, यकीन करें कि नज़ला और ज़ुकाम और इस तरह की जिनको तकलीफ़ें हैं ना, वो दूर होंगी। और मैं इसको मेडिकली भी देखती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लम की हर बात में कितनी हिकमत थी। सारी रात हम यूं होते हैं ना, लेटे होते हैं, तो अब हमारे नाक में अगर कोई रतूबत है तो वो भी यूं है, ठीक है, अब वो जम गई इधर। अब तसव्वुर में लाए ना, नाक में कोई भी चीज़ थी तो वो सीधी नहीं। अब जब हम उठ के बैठते हैं तो जब 3 दफ़ा ज़रा ज़ोर से करते हैं तो वो रात भर की जमी हुई चीज़ें जो वो एक दफ़े ही निकल आती हैं, वरना क्या होगा, बोझ होगा। ऐसी खाली हाथ से झाड़ लें, फिर उसके बाद यानी जब आप वज़ू करें, और ऑफ़ कोर्स ये जो सुबह की नमाज से पहले का जो वज़ू है ना, आम वज़ू में तो इतनी हम मुबालगे के साथ नाक में पानी नहीं डालते, लेकिन ये जो सुबह की नमाज है उसके लिए आप पानी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप फील करेंगे कि इंसान जो है वो हल्का फुल्का महसूस करता है। फिर हमने वज़ू का तरीका सीखा, क्या तरीका है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, सिर्फ लफ्ज़ बिस्मिल्लाह, पूरी भी नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला काम क्या है कि दोनों हाथों को धोया जाएगा, यानी ये जो यहाँ तक ये जो कलाई होती है ना, जहाँ अमूमन घड़ी पहनी जाती है, यहाँ तक दोनों हाथों को धोया जाएगा। और इस तरह से कि अगर हाथ में कोई चीज़ पहनी हुई है, कोई अंगूठी कोई घड़ी, तो उसको हिला के पानी नीचे तक जाएगा। फिर उसके बाद चुल्लू सीधे हाथ के अंदर हम पानी लेंगे, जैसे आप टैप वाटर है, आप उसमें अपना हाथ नीचे करेंगे। इस तरह से जब आपके अंदर कुछ पानी आया, उसके अंदर से कुछ पानी मुंह में डालेंगे कुल्ली के लिए, थोड़ा सा पानी जो बच जाता है उससे, इस तरह से। हमारे यहाँ अमूमन वज़ू के अंदर जो तरीका मारूफ है वो क्या है कि सीधे हाथ से कुल्ली करते हैं और उल्टे यानी बाएं हाथ लेफ्ट साइड से हम नाक में डालते हैं। हमारे कल्चर में अमूमन यही है। ओके है, गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको रिवायत इसकी सुनाऊंगी इसलिए कि जो चीज़ नहीं होती है उसको इंसान की तबीयत फ़ौरन नहीं लेती। लेकिन जो ज़्यादा ऑथेंटिक रिवायतें हैं वो क्या कि आप एक ही पानी से पहले मुंह में डालते थे, बाकी जो बचता उसको नाक में डालते हैं। अब दोबारा फिर पानी के अंदर हाथ जाएगा, फिर धुलेगा, फिर कुल्ली करेंगे, फिर नाक में डालेंगे। इसकी दलील जो है ये आप लोगों के पास लिखी हुई है, दलाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातों के लिखे में, लेकिन मैं चाहूँगी कि इसको सुनने वाले भी सुन लेंगे तो बेहतर होगा कि अल्लाह के नबी सल्लम क्या करते थे कि एक चुल्लू लेकर आधे से कुल्ली करते और आधा नाक में डालते और नाक को बाएं हाथ से झाड़ते। ये अमल 3 दफ़ा करते। ये रिवायत है सही बुखारी की। एक से ज़्यादा जगह इसकी रिवायत मौजूद है, फिर सही मुस्लिम में अत्तहारा बाब फी वुदू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस का नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 235, 235। और जो सही बुखारी की रिवायत थी उसका नंबर 199 है। ठीक है, इसके बाद फिर 3 दफ़ा मुंह धोया जाएगा। मुंह धोने का तरीका क्या होता है कि पूरे मुंह को धोना है। जैसे अभी इस वक्त मैंने स्कार्फ पहना हुआ है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, या कम से कम मुझे इसको पूरा पीछे करना पड़ेगा। ये पूरा हिस्सा सर के बालों से लेके ये जगह चिन, ये इतना नहीं कि सिर्फ मुंह पे, बाज लोग जो बस सामने सामने करते हैं कि किसी को क्या दिखेगा, नहीं पूरा हाथ जैसे मलते हैं ना। और सिंपल देखिए, जहां तक आप साबुन लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं, ये पूरे हिस्से को 3 दफ़ा धोना होगा। और उसमें भी तरीका वही होता है कि पानी डाल दिया और फिर उसके बाद दोबारा और दोबारा 3 दफ़ा करेंगे। एक दफ़ा करने से वजू हो जाता है, लेकिन 3 दफ़ा हद है। 3 से ज़्यादा अगर किसी ने किया तो आपने फरमाया कि उसने ज्यादती की, फिर गुनाह होगा। इसलिए बाद दफ़ा लोग टैप खोलते हैं, मुंह पे साबुन मल रहे हैं, धो रहे हैं, ऐसा ना करें। सुबह के वक्त आप उठे, अब आपको लग रहा है कि आपको साबुन भी लगाना है, तो उसका तरीका क्या कि पहले आराम से पूरा मुंह हाथ धो लें, साबुन भी लगा लें, जो लगाने हैं क्लींजर लगाने हैं लगा लें, टोनर लगाने हैं लगा लें, उसके बाद फिर आखिर में वजू की नीयत से। बस वजू के अंदर आखिरी हद 3 दफ़ा, कुली भी 3, नाक में भी 3 दफ़ा, मुंह पे भी 3 दफ़ा, और फिर उसके बाद आप मतलब जो भी काम करें बस उतना ही करें, उससे ज्यादा ना करें। ठीक है, तो 3 दफ़ा किया, फिर उसके बाद दाई साइड यानी हाथ से लेके कोहनी तक धोया जाएगा, फिर उसके बाद राइट हैंड पे 3 दफ़ा, फिर लेफ्ट साइड को धोएंगे, फिर उसके बाद सर का मसा किया जाएगा। मसा कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको थोड़ा सेक्शन से बताती हूँ। हाथ दोनों पानी में डालें और उसको झाड़ दें हल्के से, कोई गीला करना मकसद नहीं होता, सिर्फ एक हल्के अंदाज से एक फीलिंग आती है। अब उसके बाद आप ये दोनों हाथ जो है ये इस तरह सर पे लेके जाएंगे, ये देखिए ये पूरे जाएंगे जहाँ तक गुद्दी है। गुद्दी ये जगह होती है जहाँ अमूमन चोटी होती है, ये यहाँ, और इसके बाद फिर इसको वापस लाएंगे। अब ये वापस लाने वाला अमल जो है ये बाल आपके ख़राब करता है, लेकिन अल्लाह को आप पे प्यार आएगा। दोबारा करती हैं, आप देखिएगा, यानी हाथों को दोनों को पानी में डाला, फिर इसको छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ से लेके ये जाइए, यहाँ गुद्दी तक ले जाएं, फिर वापस लाएं हल्के हाथ से। ये सर का मसा है, और सर का मसा जो है वो एक ही दफ़ा होता है, यानी उसको 2 दफ़ा नहीं करना, 3 दफ़ा नहीं करना। अब ये हो गया, इसके बाद अगला मसा क्या है, कानों का, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कान का मसा क्या होता है, दोबारा आपके हाथ पानी में जाएंगे जैसे टैप वाटर है, उसके बाद ये शहादत की उंगली ये जाएगी आपके कान के अंदर, यानी आप देखिए ये जो हमारे कान की जगह होती है ना ये वाली, और ये जो आपका थंब है ये पीछे जाएगा, इसको घुमाएंगे और इसके साथ इसको करके यूं, और सेम टाइम पे साथ ही ये काम करेंगे। यानी अगर आपको आदत है तो आप दोनों साथ करेंगे, उंगलियां इसको साथ ला रहे हैं और थंब को पीछे से आगे ला रहे हैं। और ये हर चीज़ की दलील है, ये जो बात मैंने बताई है ये इब्ने माजा की रिवायत है, अत्तहारा तिर्मिज़ी में रिवायत है, फिर इब्ने हुज़ैमा की रिवायत है। यानी मसा करने का सही तरीका यही है कि सर के ऊपर गए तो गुद्दी तक ले जाके वापस बाल लाए, फिर दोबारा पानी में हाथ गए, और उसके बाद ये जो शहादत की उंगली है इसको कानों में डालेंगे, और थोड़ा सा जैसे मूव करने का स्टाइल हो के ये पूरे कान के, ये जो अब देखिए कि हमारे कान की शेप ऐसी कि यहाँ मैल फंस सकती है ना। अब दिन में 5 दफ़ा जब आप इधर करेंगे, फिर इसी तरह पीछे अमूमन आप कभी फील करें, जो लोग इस तरह अगर अभी तक नहीं करते थे ना, तो किसी वक्त भी आप बैठे हो ना जैसे सारे दिन के, तो बाद में आप अपने ये कान के पीछे हाथ लगा के ना तो सूंघे, तो एक अजीब बहुत ही गंदी स्मेल आएगी। बाद लोगों के जब कान में बुंदे पहनते हैं और आर्टिफिशियल, तो कभी वो उतारे आप सूंघे तो उसमें बहुत बैड स्मेल होती है। ये एक फितरी तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया कि जिसके जरिए से हमारे कान के पीछे तक से सफाई हो जाती है, ठीक है, ये है वो मसनून अमल। और आप देखिए कि जब हम अहादीस को पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद यही फायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बचपन से हम नहीं कर रहे होते वो करते हैं। लिटरली मैं अपने बारे में भी आपको कहूंगी कि मैंने जब शऊर के साथ पढ़ा तो मैंने अपने वजू और अपनी नमाज में कई तब्दीलियां की। और अगर मेरी सोच वही रहती कि जो बचपन से सिखा दिए मौलवी साहब ने या खाला जी ने वही तरीका रखना है, तो हम उन सुन्नतों से महरूम हो जाएंगे। एक काम है उसके करने का तरीका होता है, आला तरीके का। एक होता है ओके, और एक होता है बस गुजारा करो। हम में से हर एक का क्या गोल होना चाहिए? बेहतरीन चीज़ करनी है। तो ये जो छोटी छोटी सुन्नतें होती हैं, इससे नमाज बेहतरीन और वजू जो है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। जी, गर्दन के मसे के बारे में देखिए कि ये बुक जो हमारे सामने है, इसमें सारी रेफरेंसेज है, कोई एक ऐसी रिवायत नहीं है कि जिसे गर्दन का मसा साबित हो। आप देखिए कि कान का मसा, सर का मसा, कितने अहतमाम से बताया जा रहा है ना, लेकिन ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि जिससे गर्दन का मसा हो। हालांकि हमारे कल्चर में, इंडियन पाक जो कल्चर है, उसके अंदर गर्दन के मसे की बात जो है वो बहुत तफसील से होती है। तो इन्होंने भी लिखा हुआ है कि हमें गर्दन के मसे की कोई रिवायत नहीं मिली। ठीक है, पढ़ के सुना देती हूँ। हाफिज इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये असलाफ में से थे, यानी ये पुराने दौर के यानी मुहद्दिसीन, और इन्होंने मतलब दीन की बड़ी खिदमतें की। कहते हैं कि गुद्दी के नीचे गर्दन के अलग मसे के बारे में कतन कोई सही हदीस नहीं है। गर्दन के मसे की रिवायत के मुतालिक इमाम नववी फरमाते हैं, ये हदीस बिल इत्तेफाक ज़ईफ़ है। आप नमाज़ों की कुछ किताबों में ये रिवायतें देखेंगे गर्दन के मसे की, और इवन कुछ बुक्स होती हैं उसमें दिखाता है। तो इन्होंने जब रिसर्च किए तो वो हदीसें ज़ईफ़ हैं। इसके बाद देखिए, आपका दिल ठुकता है, ये बात मैं आज खोल दूं कि नमाज का मौजू ऐसा मौजू है कि जिस पे सबसे ज़्यादा हमारी उम्मत में इस्तराब आता है। हम शादियां करते हुए किबला नहीं देखते, हमें फ़िक्र नहीं होती, जो भी कर लो कहते हैं दुनिया, हम कमाएं कुछ भी, हमें इसकी इतनी फ़िक्र नहीं होती। जहां नमाज का मसला आता है तो हम एक लाइन पे चलना चाहते हैं, और उसमें 19-20 पे लोग माइंड भी बहुत करते हैं। तो मेरा इस वक्त आप में से किसी को मनवाना शर्त नहीं है, ना मेरा ये गोल है। किताब सामने है, हदीस मौजूद है, अभी हमने बात भी सुन ली कि अल्लाह के नबी की हदीस आ गई, इसमें मेरा एक लफ्ज़ नहीं है। इंशाल्लाह ये जो बातें मौजूद हैं, ये सारे उसके दलाइल मौजूद हैं। इसके बावजूद अगर आपको नहीं शौर, जो कर रहे हैं करते रहे, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह ताला जो बात ठीक होगी अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए डाल देगा। इन मसलों में इतनी शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए। दूसरी बात एक और कहूँगी, मतलब जो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी, कि ऐसी बातें आप सुन रहे हैं ना, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, किताब आपके सामने है, उस्ताद आपके सामने है, जो शरह सदर आपको होगा ना इस बात को सुन के, वो उस बंदे को नहीं होगी जिसको आप जाके ये मसला सुनाएंगे। तो ऐसे मसलों को दूसरों से उस वक़्त तक डिस्कस ना करें जब तक आपका अपना शरह सदर ना हो। पहले आप ख़ुद भी दिल को जमा लें, पहले आप अमल करें, फिर दूसरों को सुनाएं। हमारे आज दीन के जो उलझने की जो वजह ना, उसकी वजह ये कि हमने इस तरह के टुकड़े टुकड़े लोगों में फैला दिए। मिसाल है, जो लोग यहाँ नहीं आए हुए कोर्स के लिए, यहाँ नहीं बैठे हुए, अब घर जाती आप उन्हें के, तुम्हें पता है कि जो वजू मैं करती थी उसमें तो इतनी खराबियाँ हैं, और तुम्हें पता है कि अल्लाह के नबी तो ऐसे करते थे, वो कहीं देखा, मैं इसीलिए नहीं जाती। वो नहीं आएंगे, उनको वो स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी, उनको इस महफिल की वो रूहानियत नहीं मिलेगी, उनको वो रूहानी खुराक नहीं मिली जो आपको इस वक्त मिल रही है, जो इत्मीनान, जो खुशी, जो दिल का सुकून हमें इस महफिल में मिलता है, उनको नहीं मिला। घर बैठे कैसे ये बातें समझ आएंगी? इसलिए ऐसी बातों काम ना करें। इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि अगर आप दीन की, अपने दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों की खिदमत करना चाहते हैं ना, तो उनको अल्लाह की किताब से जोड़ दें। जो बात आपको क्लासरूम में बैठ के समझ आई है ना, तो यकीन रखें कि उनको भी यहीं बैठ के समझ आएगी। और ये बातें आपको भी नहीं थी बाहर बैठ के समझ आनी, आपको ये बातें मैं किसी दर्स में बाहर बताती ना बगैर किताब खोले, तो आपने कहना था देखना ये हमें वहाबी बना रही हैं, ये हमें साबी बना रही हैं, ये हमें पता नहीं क्या बना रही हैं। तो कोई किसी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, जो अल्लाह ने बना दी है वही काफ़ी है। ठीक है, अगली चीज़ जो है वो पाँव के धोने की है। पाँव के धोने का भी तरीका वही है कि जो टखने होते हैं, एंकल्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इससे लेके पूरे पाँव को धोना होता है, और उंगलियों के बीच में जो गैप्स होते हैं ना, तो उसका ख्याल करना। जैसे ये छोटी उंगली छिंगली उंगली है, इसको अल्लाह के नबी सल्लम जैसे पाँव की उंगलियों के बीच में इस तरह से करते थे। हाथों में है तो आप इसको भी देख लें। फिर इस तरह आप देखिए कि मर्द है, अगर उसकी दाढ़ी है तो उसको दाढ़ी के अंदर खिलाल करता होता है, अपनी उंगलियों को लेके, तो जैसे इस तरह से कि नीचे की स्किन वो खुश्क ना रहे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आपके लिए अगर मसला एक हो सकता है कि क्या स्काफ उतार के मसा करें सर का, है किसी के ज़हन में ये सवाल? बाज़ लोग जो बाहर वजू करते हैं तो वो सवाल पूछते हैं कि हम स्काफ उतार के करें कि नहीं, तो आप देखिए कि स्काफ उतारना पड़ेगा आपको। और इसका मसला आगे आएगा, मुझे लगता है कि वो तयम्मुम के और कुछ मसाइल के अंदर जो चीज़ें आएंगी, आगे आ रहा है ये मसला, इसलिए अभी इसको नहीं डिस्कस करते। कानों को जी, जैसे बुंदे कुछ भी पहने हुए अगर आपने हिला जुला ले, जैसे कुछ तो होते हैं ना बहुत बड़े टॉप्स टाइप हैं जो बिल्कुल आगे भी स्टॉपर है पीछे, तो हल्का सा मूव कर लें, मतलब उसके नहीं, बस ये पोर से शुरू करेंगे, फिर जितना भी आप कर सकते हैं बेहतर है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो हमने इस हिस्से से सीखी कि वुजू के बाद की दुआ, आप मेरे साथ पढ़ेंगे, बड़ी प्यारी दुआ है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स पूरा वुजू करे और फिर कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। इसका तर्जमा क्या है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिससे चाहे दाखिल हो। ये दुआ पढ़नी है, ये दूसरा कलमा के नाम से जो मारूफ है। तो ये आप कब पढ़ेंगे? वजू करा, देखिए वजू की दुआओं को भी समझ लीजिए कि बाज़ दफ़ा लोग वजू के साथ बहुत सारी दुआएं नोट करते हैं, जो दुआएं सुन्नत से मिलती हैं। वजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह, उसके बाद वजू करने के दौरान कोई दुआ नहीं। आप सोचिए अननेचुरल भी है, मुंह में पानी चला जाए, नाक में पानी चला जाए। फिर बाज़ दफ़ा आप देखिए कि अब रेस्ट रूम के अंदर ही है सिंक, जैसे आप यहाँ भी ऐसे ही है, तो आप अंदर रेस्ट रूम में तो आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते, वो एक गिल्ट वाली कैफियत है ना। तो ये वजू में मुंह धोते हुए हाथ धोते हुए नहीं, ऐसी दुआएं जो हैं वो दुरुस्त नहीं। बस अब सिंपल बात करें कि वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह, पूरे वजू में कुछ नहीं, बाद में बाथरूम के बाहर आए। रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी ऊपर यानी देखते थे, लेकिन ये रिवायत जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बस सिंपल बाहर आके आप दुआ पढ़ें। एक दुआ और है इसके साथ, वो क्या है? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। तर्जमा इसका क्या है? ए अल्लाह, तू अपनी तमाम तर तारीफ़ों के साथ हर ऐब से पाक है, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरे हुजूर तौबा करता हूँ। ये दुआ भी वजू के बाद की, आप इसको पढ़ें। तरीक़ेकार आपका यही हो सकता है कि आप दोनों दुआओं को साथ मिला लें, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, फिर साथ ही आप पढ़ लें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। और उसके बाद फिर एक दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, वो यहाँ नहीं लेकिन वो सही रिवायत के साथ है, और वो क्या है? अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तवाबीना व जालनी मिनल मुततहिरीन। इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वाला और बहुत ज़्यादा पाक रहने वालों में से कर दे। ये दुआ भी मसनून है जो पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा बाकी जो दुआएं हैं हर उज्व के धोते हुए, ये चीज़ें जो हैं वो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर अगली बात इस हिस्से से हमने सीखी कि वुजू करने से गुनाह माफ़ होते हैं। मैं ये रिवायत आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। और आपकी एक्टिविटी भी यही है कि अब इसके बाद जो अगली नमाज का आप वुज़ू करेंगे ना, तो आप वुज़ू करते वक्त ये तस्वुर में लाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन वुज़ू शुरू करता है फिर कुल्ली करता है, तो इसके मुंह के गुनाह निकल कर यानी झड़ जाते हैं। फिर जिस वक्त नाक झाड़ता है तो इसके नाक के गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त चेहरा धोता है तो इसके चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं। यहाँ तक कि इसकी आँखों की पलकों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। चेहरा धोते वक्त गुनाह दाढ़ी के किनारों से भी गिरते हैं। और जिस वक्त वो हाथ धोता है तो इसके दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों हाथों के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त मसह कर लेता है तो इसके सर से गुनाह निकल जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों कानों से भी गुनाह निकल जाते हैं। फिर जिस वक्त पाँव धोता है तो इसके दोनों पाँव से गुनाह निकल जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों पाँव के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर जब इसने नमाज पढ़ी, अल्लाह की तारीफ, सना और बुजुर्गी बयान की और अपना दिल अल्लाह की याद के लिए फारिग किया, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है जैसे वो इस दिन पाक था जब इसकी माँ ने जना था। ये हदीस आपने किसी एक ऐसे बंदे को ज़रूर सुनानी है जिसको वुज़ू करना बड़ा मुश्किल लगता हो। अमूमन देखा गया कि लोगों को नमाज़ पढ़नी इतनी मुश्किल नहीं लगती जितना वुज़ू करना मुश्किल लगता है। और अमूमन बच्चे कहते हैं वुज़ू ना हो तो फिर हम नमाज़ पढ़ लेंगे। तो आपने ये हदीस सुनानी, तसव्वुर में लाएं, गुनाह झड़ रहे हैं, हाथों के गुनाह, पलकों के गुनाह, ज़ुबान के गुनाह, यानी हर तरफ से गुनाह इंसान के जो हैं वो झड़ रहे हैं। और अल्लाह ताला हमें गुनाहों से पाक होने वाला बना दे। इसी तरह अगली बात इस हिस्से से हमने जो सीखी वो भी रिवायत बड़ी खूबसूरत है, आप खुद ही पढ़िएगा बाद में। और वो क्या है कि वुज़ू के अज़ा क़यामत के दिन चमकेंगे। और अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को वुज़ू के निशानों से पहचानेंगे। लोगों ने आपसे पूछा था कि आप इतने बड़े मैदान महशर में अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, तो आपने कहा कि क्या कोई अपने घोड़े को नहीं पहचानेगा। पांच कलियान एक घोड़ा होता है जिसके चारों सुम और सर की जो पेशानी है वो सफ़ेद होती है, तो कहा पहचान लेगा। तो कहा मैं भी अपनी उम्मत को वज़ू के निशान से पहचानूंगा। एक मौके पे आपने एक सहाबी को देखा तो वो खूब ऊपर तक या कोनियों से भी ऊपर पानी डाल रहे थे, तो आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहने लगे अल्लाह के नबी मैं अपनी चमक बढ़ा रहा हूँ, यानी मैं ज़्यादा दूर तक अपने हिस्से को चमकाना चाहता हूँ, तो लिहाजा वज़ू खुशी से किया करें। कभी लेजीनेस हो, सुस्ती हो ना, तो वज़ू करें। तो जब आप वज़ू करने जाएं तो अपने आप को क्या कहें कि मैं अपने गुनाह धोने जा रही हूँ। इंशाल्लाह बर्तन धोते होंगे, कपड़े धोते होंगे, तब इंशाल्लाह आपने गुनाह भी धोने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वज़ू से रिलेटेड वही बातें सारी कर चुके तकरीबन, कि वज़ू के अंदर इंसान को पानी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वज़ू करते वक्त कोई जगह खुश्क ना रहे। कोशिश किया करें कि वज़ू करते हुए बातें ना करें। देखिए वज़ू जो है ना, ये तैयारी है, आप अपने रब से मुलाकात करना चाहते हैं, तैयारी करके जा रहे हैं ताकि अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी हो जाए। और आप कहीं जाते हुए अगर जब तैयार होते हैं तो आपका जहन पूरा वहाँ की तरफ होता है ना, अच्छा मैं जाऊँगी, ये पहनूंगी, ये करूँगी, फिर मैं ऐसी लगूंगी। तो नमाज में भी पहले से जहन बना लिया करें। जब हम बातें करते करते वज़ू करते हैं तो आप सोचिए कि जब जायनमाज़ पे खड़े होते हैं तो तब क्या होगा, फिर भी तो वो ज़ाहरी बातें जहन में आती रहेंगी ना। तो इंशाल्लाह ताला आपका वज़ू जब अच्छा होगा तो नमाज़ खुद ही अच्छी होगी। अगली चीज़ हमने जो इस हिस्से से सीखी वो क्या है कि वज़ू आधा ईमान है। यदि जिसने अच्छा वज़ू कर लिया उसने आधा ईमान बचा लिया। अगली बात हमने इससे सीखी कि वज़ू जो है वो गुनाहों को दूर करता और दरजात को बुलंद करता है उस वक्त जबकि वुज़ू करना मुश्किल हो। मसलन आपने मेकअप किया, कितना मुश्किल लगता है उस वक्त का वुज़ू करना। दर्जों की बुलंदी और गुनाहों के कफ़ारे हैं उस वक्त का वुज़ू जब आपका वुज़ू करने को दिल ना चाहे, इसलिए खूब अच्छी तरह वुज़ू किया करें। फिर अगली बात हमने इससे सीखी कि नाखून के बराबर जगह भी अगर खुश्क हो जाए तो वुज़ू नहीं होता। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि अगर कोई सही वज़ू ना करे तो उसको कहा जा सकता है कि दोबारा करो। फिर अगली बात हमने सीखी कि वुजू के बाद दो नफिल का पढ़ना बंदे को जन्नत में ले जाने का जरिया बनता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को अल्लाह के नबी ने जन्नत में उनकी आहट सुनी थी। बाद में पूछा कि बिलाल तुम क्या नेकी करते हो, तो कहा कुछ नहीं, बस जब वज़ू करता हूँ तो दो नफिल पढ़ लेता हूँ। तो क्या ख्याल है हम भी नियत करें इस सुन्नत की? एक तो ये नियत करते हैं कि बावज़ू रहेंगे। इस वक्त कितने लोग आप लोगों में से बावज़ू हैं? चलें माशाल्लाह। सुबह घर से निकलते वक्त कितने लोगों ने वज़ू किया? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो बग़ैर वज़ू करके आते हैं इधर? उनको बहुत नींद आती होगी। ठीक है, तो नियत रखें, वज़ू करें। देखिए हदीस में आता है कि मोमिन अपने वज़ू की बड़ी हिफाजत करता है। इतना आपको इससे फ़ायदा होगा कि एक तो आप बुराइयों से दूर होंगे, दूसरा आप हर वक्त सोएंगे नहीं क्योंकि आपको डर होगा कि सो गई तो वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, तो बावज़ू रहें, और दूसरा यह है कि वज़ू जब भी करें तो उसके बाद दो नफिल पढ़ लें। ठीक है, फिर अगली चीज़ हमने सीखी सिस्टर से कि एक वज़ू से कई नमाज़ें अदा की जा सकती हैं। यदि आपका वज़ू ना टूटे, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पढ़ सकते हैं? पूरा दिन आप वज़ू से रह सकते हैं, कोई हरज नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर हर वक्त खाना नहीं चाहिए। जो हर वक्त खाते हैं उनका तो वज़ू नहीं कायम रहता ना। अगली चीज़ हमने इसमें सीखी, अगर आपका वज़ू है फिर आपने दूध पी लिया तो उसके बाद कुल्ली करनी होगी। हुक्म समझ लें, ये भी एक अच्छा मसला है, आपके लिए आसान हो जाएगा कि ऐसी चीज़ें खा लेना जिसका असर मुंह में रहे। चिकनाई है, सालन की कोई स्मेल है, कुछ है, तो वज़ू तो नहीं टूटेगा, लेकिन कुल्ली कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने एक मौके पे बकरी का गोश्त खाया, इसके बाद नमाज़ पढ़ी और दोबारा वज़ू ना किया। इसी तरह एक मौके पे अपने सत्तू खाए और आपने कुल्ली करके नमाज़ पढ़ी और वज़ू नहीं किया, तो हमारे लिए एक क्राइटीरियन आ गया कि हर वो खाना जिसका असर अपने मुंह में महसूस करें, तो बस कुल्ली कर लें तो वज़ू नहीं टूटता इंशाल्लाह। अगली बात जो हमने इस चैप्टर से सीखी वो क्या है कि मोज़ों पर यानी सॉक्स जो हैं उस पर मसह करना, उसके बारे में क्या सीखा हमने? पहली बात यह है कि वुज़ू करके अगर सॉक्स पहने तो सफ़र की हालत में 3 दिन तक, और हज़र यानी घर में रहते हुए एक पूरा दिन यानी 5 नमाज़ें मसा के साथ पढ़ी जा सकती हैं। तरीक़ाकार क्या होगा कि वज़ू कीजिए जैसे वज़ू करते हैं, फिर इससे पहले कि वज़ू टूटे, वज़ू टूटने से पहले जुराबे पहन लें, तो उसके बाद जब हर नमाज का अगली नमाज का वक्त आएगा और आप वज़ू करेंगे तो जुराबे उतारने की ज़रूरत नहीं। हाथ को पानी से गीला करके झाड़ के जैसे मसा किया था वैसे ही, और पाँव के ऊपर के हिस्से पे, ये जैसे ऊपर की छत जो होती है इस पे हाथ से एक दफ़ा फेर दिया जाएगा, सिर्फ एक दफ़ा, पूरा ऊपर नीचे कुछ नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि अगर दीन में अक़ल का दखल होता तो पाँव का जो मसा है वो नीचे से किया जाता। यानी अक़ल तो ये कहती है ना कि थोड़ी बहुत मिट्टी को तिनके धागे बाल पाँव के नीचे लगेंगे, नीचे नहीं करते, ऊपर करते हैं और एक दफ़ा करते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ हमने इसे सीखी कि जब तक इंसान जुराबे उतारता नहीं है उस वक्त तक ये मसा की मुद्दत है, जूँ ही आपने सॉक्स उतार दी फिर उसके बाद दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि अगर छोटी मोटी कोई सुराख है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसको अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि सहाबा कराम की जो गुर्बत थी उससे ये गुमान नहीं किया जा सकता कि उनके सॉक्स में कोई भी सुराख नहीं होता होगा। फिर अगली बात इसमें हमने ये सीखी इस चैप्टर में कि वो जुराब जिसको पहनने से लगे कि कुछ पहना हुआ है, मोटी है पतली है इस ओके, लेकिन कुछ फीलिंग्स आए। आज के दौर में बिल्कुल ऐसी सॉक्स भी हैं जो बिल्कुल झिल्ली की तरह है, स्टॉकिंग टाइप की, कि जीवन जिससे स्किन भी दिखती है, तो वो फिर एक उससे अलग है। इसके अलावा जो आम पहनने की आराम की जो जुराबें होती हैं उसके ऊपर मसा जो है वो किया जाएगा। ठीक है, देखिए कि दीन की असल को असल समझ लेंगे ना, आज के दौर में कई ऐसे कपड़े इजाद हो चुके हैं जो पहले दौर में नहीं थे, सच है ना? यानी जितना सिंथेटिक कपड़ा हम पहनते हैं, पॉलिस्टर, ये जो हमारे आर्टिफिशियल कपड़े होते हैं, शिफोन, जॉर्जेट, रबड़ के, प्लास्टिक के, पहले तो नहीं थे, पहले तो सिर्फ कॉटन थी ना। तो अब वो हुक्म बदल गया ना, तो अब कोई ये कहे कि पहले हमें ये हुक्म दिखाया जाए कि पॉलिस्टर के कपड़े पहनने भी जायज़ हैं कि नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी के दौर में तो ये नहीं होते थे। जहाज अल्लाह के नबी के दौर में नहीं होता था। तो कोई पूछे कि जहाज में बैठना जायज़ भी है कि नहीं जायज़, हमें इसकी कोई दलील बताएं, तो सेंस नहीं बनती ना। ये हमारे हाँ ये मारूफ है मसला कि चमड़े की जराबों में मसा होता है, वरना नहीं। तो आप ज़रा सोचिए कि क्या गर्मी के मुल्कों में या हमारे ही अपने कल्चर में देखें, शायद कभी किसी ने जुराबे चमड़े की देखी भी नहीं होगी, इल्ला ये कि इन मुल्कों में हो सकते हैं, आपके इस मुल्क में तो हो क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत होती है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में तो कभी किसी को चमड़े की जुराबे पहने हुए नहीं देखा। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि फिर उसके लिए तो मसे का हुक्म ही ख़त्म हो गया। और अगर आप चाहें तो मैं आपको हदीसें पढ़ के भी सुना देती हूँ, हमारे सामने लिखी हुई है, और मैं इसको दोबारा इसलिए नहीं पढ़ना चाह रही कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पढ़ के आए होंगे और आपके पास दलील के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ जुराब के लफ्ज़ को भी देख लें, मैं इसको पढ़ के बल्कि सुनाती हूँ, पेज 77 पे है कि लुगत अरब की मोतबिर किताब कामूस की जिल्द एक पेज 46 पे है, हर वो चीज़ जो पाँव पर पहनी जाए वो जौरब है। ताजुल उरूस में है, जो चीज़ लिफाफे की तरह पाँव पर पहन लें वो जौरब है। अलामा आइनी कहते हैं कि जौरब बटे हुए ऊन से बनाई जाती है, ये वीविंग्स होते हैं ना वीव्स, ऊन की बनी हुई। अब आप देखें कि जौरब है ना, अब ये चमड़े से नहीं है, उसी डिक्शनरी से ही ये चीज़ भी दिखी जा रही है कि ऊन से बनाई जाती और पाँव में टखने से ऊपर तक पहनी जाती है। यानी ये लाजमी है कि ये जो आपके एंकल है ना, ये टखने ये छुपने चाहिए। अगर इससे नीचे की जुराब है ना, जैसे शायद आजकल लोग फैशन की भी पहनते हैं, उस पर मसा नहीं होगा। जुराब की ये शर्त है कि आपके टखने ढके, वरना तो आप देखें ना कि जूते जो हम पहनते हैं, जो बूट पहनते हैं, तो टखने खुलते हैं, तो उस पर आप नहीं कर सकते मसा। फिर इसके बाद आरिजा एक और किताब है कि जौरब वो चीज़ जो पाँव को ढांपने के लिए ऊन की बनाई जाती है। फिर इसी तरह उम्दत और रियाया में है कि जुराबे रुई यानी सूत की होती हैं, सूत यानी कॉटन, और बालों की भी बनती हैं। इसी तरह गायतुल मकसूद में है कि जुराबे चमड़े की सूफ ऊन को कहते हैं, और सूत की भी होती हैं। तो बस ये बात साबित हुई कि जौरब लिफाफे या लिबास को कहते हैं, वो लिबास चाहे खाल का बना हो यानी चमड़ा चर्मी स्किन को कहते हैं, सूती हो या ऊनी, हम इस पर मसा कर सकते हैं। अगली चीज़ ये है पगड़ी के बारे में। अगला हुक्म जो हमें इस चैप्टर से पता चला कि अगर सही पगड़ी जो बहुत लंबी और उसमें कई बल्ब होते हैं, अगर किसी ने वो पहनी हो और उतारने में उसकी तकलीफ़ हो और उतार के दोबारा पहनना मुश्किल हो, तो पगड़ी पर मसा हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी पर मसा करते थे। अब यहाँ साथ ही एक सवाल आ जाता है स्काफ का। बात लोग पगड़ी का सुनते ही कहते हैं कि जब पगड़ी पे मसा हो सकता है तो स्काफ पे भी हो सकता है, लेकिन स्काफ पे नहीं हो सकता। क्या करें, आप जैसे बहुत पिनअप करके पहनते हैं, तो पहली बात यह कि जहाँ भी आप इवन बाहर पब्लिक प्लेसेस पे भी जाएं, तो रेस्ट रूम्स तो अलग ही होते हैं ना, औरतों के अलग होते हैं, मर्दों के अलग होते हैं। आराम से स्काफ उतारिए, पूरा मसा करें, क्योंकि मसा करना एक सुन्नत है। मुंह पे पूरा पानी नहीं जाता तो भी उससे मुश्किल हो सकती है, जितनी मुश्किल सहेंगे ना अल्लाह के किसी हुक्म को मानने में, उतना इंशाअल्लाह ताला अजर ज्यादा होगा। तो स्काफ को क्यास नहीं कर सकते पगड़ी के ऊपर, क्योंकि वो पगड़ी एक और कैफियत का नाम है। वो आपने अगर असल पगड़ी देखी है, वो कई कई गज लंबी होती है, फिर उसको बल डाल के और कई किस्म से होती है। तो स्काफ के मसले को हम इस पे क्यास नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर अगली चीज़ हमने इस बाब से सीखी कि वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि अगर कोई वुज़ू के बगैर या वुज़ू टूटने के बावजूद भी नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। फिर अगली बात हमने सीखी कि जिस्म से किसी रतूबत के निकलने से वुज़ू दोबारा करना लाजमी हो जाता है, गुसल की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगला मसला है प्राइवेट पार्ट्स को छूने का, यानी अपनी या बच्चे की या किसी की भी साफ़ करते हुए अगर प्राइवेट पार्ट को हाथ लग जाए तो फिर वज़ू करना पड़ेगा। इसमें भी दो तीन तलाफ़ी बातें हमारे कल्चर में दिखती हैं। इन सारी चीज़ों का खुलासा क्या है कि बग़ैर कपड़े के नेकेडली अगर प्राइवेट पार्ट को हाथ लग जाता है तो वज़ू टूट जाता है, लेकिन अगर कपड़े के साथ ख़ारिश करते हुए या कपड़े पहनने में या किसी तरह लगता है तो फिर वज़ू नहीं टूटता। बाज़ माएँ पूछती हैं कि बच्चे को धुलाएंगे तो क्या हमारा वज़ू टूट जाएगा, तो उसका भी समझ लीजिए बात कि बच्चे को आपने खोला, बाज़ लोग सिंक पे धोते हैं, बाज़ जहाँ भी धोते हैं, अगर आपका बच्चे के उस गंदगी को लग गया हाथ तो नहीं वज़ू टूटेगा, लेकिन प्राइवेट पार्ट को लगेगा तो टूटता है। अगर आप समझते हैं कि आप इस तरह से पानी बहा सकती हैं और उसको पैम्पर चेंज करते कराते में आपका अपना हाथ जिस्म को उसके नहीं लगता, तो इंशाल्लाह ताला आपका वजू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर जिस्म को हाथ लग जाता है तो फिर वजू टूट जाता है। और यही हुक्म अपने या किसी और को हाथ लगाने में भी है। फिर उसके बाद अगली चीज़ पता चली कि जो शख्स गहरी नींद सो जाता है उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा, यानी गहरी नींद वजू को तोड़ देती है। गहरी नींद क्या होती है कि लेटे और बेहोश हो गए, यानी होश ख़त्म हुई, चाहे 2 मिनट के लिए हुए, लेकिन बैठे हुए नींद आए, एकदम ऊंग आ गई, झूलने लग गए, उससे नहीं टूटता। ये अल्लाह ताला की एक रहमत है, क्योंकि जब हम लेटते हैं ना तुम्हारे जिस्म के बंद खुल जाते हैं और जिस्म से हवा खारिज होती है। असल मसला भी ये नींद नहीं है, असल मसला है हवा का खारिज होना। नींद की हालत में बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, होश नहीं रहती, उसको नहीं पता कि मेरे जिस्म से हवा निकली है कि नहीं। और जब हम लेटते हैं ना तो अल्लाह ने हमारे जिस्म को इस तरह का बनाया कि उसके सारे बंद खुल जाते हैं, और आप देखें कि नींद की हालत या लेटने की हालत में जिस्म से ज़्यादा गैस पास होती है। तो इसलिए कहा कि जब लेटेगा कोई तो उसकी गैस पास हो सकती है, लेकिन बैठने की सूरत में वो कैफियत नहीं होती। और सहाबे कराम नमाज के इंतज़ार में बैठे बैठे ऊँगते भी थे कभी, लेकिन फिर वजू के बगैर वैसे ही नमाज पढ़ते थे, तो बैठने से नहीं होता। फिर अगली बात है, हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है, उसकी क्या दलील है? बाज़ दफ़ा शैतान वहम डालता रहता है कि मेरी खारिज हुई है कि नहीं हुई, तो उसकी दो दलीलें अल्लाह के नबी ने बताई, या तो बदबू सूंघ ले या फिर आवाज़ आ जाए। ये दो चीज़ें हैं जिससे आप समझेंगे कि हवा खारिज हुई है। सिर्फ वहम नहीं करना चाहिए, बाज़ लोगों को वहम की इतनी बीमारी होती है कि वो खुद भी हर वक्त परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। फिर इसके बाद क्या कह आने से, वॉमिटिंग से वजू टूट जाता है, या फिर खून निकलने से जिस्म से, या नकसीर फूटने से वजू टूट जाता है कि नहीं? तो फिर इसके लिए पहली बात है कि जिस्म से खून निकलने से वजू नहीं टूटता। इसकी दलील है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसी दौरान उनको ज़ख्मी किया गया था, और उसके बावजूद कि उनका खून निकल रहा था उन्होंने नमाज़ नहीं तोड़ी थी। अगर वजू टूट जाता तो यकीनन वो नमाज़ छोड़ देते। फिर दूसरी बात कि क्या कह आने से या वॉमिटिंग की वजह से वजू टूट जाता है कि नहीं, तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि शरह सदर हो जाए। कह या नकसीर आने से वजू टूट जाने वाली रिवायत को जो बुलुगुल मराम और इब्ने माजा में है, इमाम अहमद और दीगर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है, बल्कि इस सिलसिले की तमाम रिवायात सख्त ज़ईफ़ हैं। लिहाजा बरात असलिया पर अमल करते हुए ये कहा जा सकता है कि खून निकलने से वजू फासिद नहीं होता। इसकी तायद उस वाक़े से भी होती है जो सहाबी गज़वे ज़ातु रिका में उनके साथ पेश आया कि रात को नमाज़ पढ़ रहे थे, किसी दुश्मन ने इन पर 3 तीर चलाए, वो ज़ख्मी हुए, खून बहने लगा, फिर भी नमाज़ पढ़ते रहे। तो ये नहीं हो सकता था कि उनको ये मसला नहीं मालूम था। तो बात यह है कि वज़ू नहीं टूटता इंशाअल्लाह ताला। फिर अगली चीज़ कि नमाज के दौरान अगर वज़ू टूट जाए तो क्या किया जाए, उसका सुन्नत तरीका क्या है कि नाक पर हाथ रखकर, यानी जैसे टिश्यू है या कुछ है, आप सफ़ में खड़े थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, इवन पढ़ा रहे थे, इंसान होने के नाते किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अब इमाम साहब हैं, अब उनका वज़ू टूट गया है। बाज़ दफ़ा तो हम ऐसी चीज़ों पर शर्म की वजह से कि नहीं लोगों को पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे, और दीन के ऊपर हर्फ ले आते हैं। नहीं, जो इस वजह से कि वजू टूट गया और फिर भी नमाज ना छोड़े कि लोग देख लेंगे, तो उसने बहुत बड़ा शिर्क किया। वो लोगों से डर गया लेकिन अल्लाह ताला से नहीं डरा। तो लेकिन किया क्या जाएगा कि अगर नमाज के दौरान वजू टूट जाए तो नाक पर हाथ रख कर पीछे पलट जाए, यानी ये एक ऐसा सिंबल है कि बाकी सबको भी जब इल्म होगा तो पता चल जाएगा कि इसका वजू टूटा है। बाज़ दफ़ा कोई वजू टूटता है, अब करे क्या? आम हालात में तो इंसान अकेला है, बस सलाम फेरें और जाके वजू करें और दोबारा नमाज़ पढ़ें आके, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जमात में अब लोग परेशान होने लगते हैं, ये क्यों निकल गए, पता नहीं वापस आएंगे नहीं, तो ये जो नाक पे हाथ रखने वाली बात है वो क्यों है कि इससे पता चल जाएगा लोगों को कि इसका वजू टूटा है। वो निकलेंगे और दूसरे लोग कदम बढ़ा के उसकी सफ़ की जो जगह खाली हुई थी उसको पूरा कर लेंगे। इसके बाद तयम्मुम की बात जो है, तयम्मुम कहते हैं कि पानी जहाँ ना मिले या पानी के इस्तेमाल से बीमारी के बढ़ने का ख़तरा हो तो फिर साफ मिट्टी से तयम्मुम कर लिया जाए, ये जायज़ है। जो चीज़ हमने देखी वो क्या थी कि सफ़र की हालत में जब पानी ना हो तब भी तयम्मुम किया जा सकता है, और पानी इतना दूर है कि वहाँ पहुँचने तक नमाज कज़ा हो जाएगी, या ऐसा मरीज़ है कि जिसके पानी के इस्तेमाल की वजह से बीमारी के बढ़ने का खौफ होगा, फिर इसी तरह की कैफियत है उसमें तयम्मुम होगा। तयम्मुम किया कैसे जाएगा? उसका बहुत ही आसान तरीका है कि पानी को किसी भी जगह, खाक है, मिट्टी है, जैसे फर्नीचर पे धूल हो सकती है, सफर में तो गाड़ी का जो शीशा है उसके ऊपर थोड़ी सी धूल हो सकती है, कहीं से भी खुश्क धूल कुछ भी हो, हल्का से एक हाथ फेर के, बल्कि फूक भी सकते हैं। यदि अगर ज्यादा मिट्टी है तो उसको, कोई मिट्टी को मत मुंह पे मलना मकसद नहीं है, या उसका ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाला जाए, इस तरह से किया जाएगा। और उसके बाद अपने हाथों पे यूं फेरेगा और हाथों को एक दफा यूं, बस ये तयम्मुम हो गया। ज़रबे वाहिद, दोबारा बोलती हूँ, मिट्टी है उस पर हाथ डाले, फूंक ले और उसके बाद इसको एक दफा मुंह पे कर ले। अब इसी को बस एक दफा यूं कर ले तो भी हो गया, और आप चाहें तो एक दफा ये करके मुंह पे फेरा, फिर दोबारा भी मिट्टी पे हाथ डाल के तो यूं कर ले, बस इतनी से चीज से वजू हो जाता है। इसमें पूरा करना और वजू वाले एक्शंस करना इसकी जरूरत नहीं। बड़ी अजीब सी, ये खूबसूरत सी अल्लाह ताला की दीवी रुखसत है। मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ इंसान के लिए साइकोलॉजिकली एक फीलिंग देने वाली कैफियत है कि तुम अब पाक हो गए हो। अल्लाह ताला बंदे को मुश्किल में नहीं डालता, और तुम्हें जो है वो नमाज़ पढ़नी है तो तुम्हें वजू करना ही पड़ेगा। फिर अगली चीज़ तयम्मुम के बारे में बड़ी खूबसूरत है कि इंसान को वजू की तलब हो या गुसल की तलब हो, दोनों में फ़र्क है ना। रेस्टरूम से हो के आया तब उसके बाद उसको वजू करना है, लेकिन अगर पीछे जो हमने पढ़ ली गुसल की हालतें जिसमें गुसल वाजिब हो जाता है, यानी कोई ताल्लुक़ कायम हुआ, जनाबत की कैफियत हुई, दोनों सूरतों में बस इतना ही करना काफ़ी है। एक सहाबी थे, जब उन्होंने सुना तयम्मुम का मसला तो बाहर गए, वो सफ़र पे थे, जुम्बी हो गए, तो वहाँ मिट्टी पे कहते मैं इस तरह लोटनियाँ लेने लगा जैसे गधा ज़मीन पे लोटनियाँ लेता है, और पूरे सर पे मुंह पे मिट्टी डाल के आ गए। कहा ये क्या किया? कहा अल्लाह के नबी मुझे गुसल करना था तो मैंने उसकी जगह ये किया। तो आपने कहा कि तुम्हें बस इतना ही काफ़ी था। यानी इतने भोले लोग होते थे और इतने सीधे साधे थे, और आप देखिए फिर अपनी वो बातें आके बता भी देते थे कि भाई इस तरह मैंने किया है। तो लिहाजा ये है तयम्मुम। तयम्मुम का मानी क्या होता है? कसद करना, इरादा करना, और इरादा करना मुराद है कि बस आपने वुजू का इरादा कर लिया, और अल्लाह ताला बंदे को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, बस उसके इरादे से ही वो काम हो जाता है। फिर मिट्टी ना मिले तो क्या किया जाए? बाज़ लोग इसके लिए भी बहुत तरद्दुद करते हैं, रेत भी ली जा सकती है, दुनिया के कुछ हिस्सों में मिट्टी है ही नहीं, वहाँ है ही रेत है, कहीं भुरभुरी है, कंकर है, कुछ कोई चीज़ ले लीजिए जो वहाँ मौजूद है। अब अलग से कोई इख्तमाम करना और के लिए बहुत परेशान रहना, तो मैं सोचती हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहने से ज़्यादा हमें दीन के स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट और उसके रूहानियत है उसके बारे में फ़िक्र रखनी चाहिए। नमाज़ पढ़ी है उसमें तवज्जो मेरी थी कि नहीं, नमाज की हालत में कोई मैंने ऐसा काम तो नहीं कर दिया, बजाय इसके कि हम इस तरह की चीज़ें करते पड़ें कि जिससे हम नमाज पढ़ के भी अपने आप को मुश्किल में डाल दें। तो ये था वो हमारा चैप्टर, गुस्ल, वुजू और तयम्मुम वाला।